अभी हम एक घंटा कमेंट्री के साथ योग करते हैं और रूपेश भाई को सभी जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं, आवाज सुनी है, टीवी में भी देखी है। सूरज भाई के साथ आते हैं, है ना? हाँ, तो रूपेश भाई अभी कमेंट्री के साथ आप सभी को योग कराएंगे।
ओम शांति। अभी बड़ा प्यारा अनुभव आप सुन रहे थे दीप्ति बहन जी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तीन बातें वो कह रही थी, एक तो अपनी प्योरिटी हमारी रक्षा करती है, बाबा से कनेक्शन अर्थात योग हमारी रक्षा करती है, और तीसरा हमारे पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। तो इसमें से जो बीच वाला है ना, योग, बाबा के साथ कनेक्शन। आज बाबा कह रहे थे कि मेहनत किसमें है, याद में ही है ना। ज्ञान बहुत सहज है, समझ लिया, धारणाएं भी हमने कर ली, सूक्ष्म चलो उसमें मेहनत हो, लेकिन मोटी धारणाएं सहज हो जाती हैं और जन्मते ही सेवा में भी लग जाते हैं। लेकिन मूल सब्जेक्ट याद, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो हैं जो कम से कम मुझे 8 घंटे याद करते हैं, कम से कम। तो अभी योग भट्ठी में बैठे हैं तो योग का चार्ट कैसा है, अब तो 8 घंटे हो जाना चाहिए। हो गए 8 घंटे। मधुबन से इस तपस्या मास में बड़ा सौभाग्य है ना बोरीवली का, कि पहला जो योग का टर्न हमें मिला, साल का पहला टर्न जनवरी मास में बोरीवली को मिला, मुंबई को मिला। तो मुंबई वाले बहुत भाग्यशाली हैं, नंबर वन है ना। तो योग से ही वो पहली और तीसरी चीज भी सहज हो जाती है, ऐसा अनुभव कहता है। जिसका योग अच्छा है उसकी प्योरिटी भी अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि एक से कनेक्शन है, पवित्रता के सागर से कनेक्शन है, तो दृष्टि, वृत्ति, जीवन सब कुछ पवित्र होता जाता है। और जो योग युक्त है उसके कर्म भी श्रेष्ठ होते जाते हैं, महान होता जाता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा योग का, और इस पे हमें बहुत गहराई से तपस्या वर्ष में ध्यान देना है, इसे बढ़ाते चलना है। इसीलिए कुछ सिंपल सी बातें मैं आपके सम्मुख रख देता हूं योग की, और फिर हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि ये तपस्या वर्ष आपका बहुत अच्छी तपस्या में बीते। और बाबा जो कहते हैं कि बच्चे तुम 2-4 घंटे के योगी नहीं हो, तुम योगी जीवन वाले हो, तुम्हारे जीवन में योग उतर आए, तुम्हें जो भी देखे तुम ना दिखाई दो, कौन दिखे, बाबा दिखाई दे। हमें देख के लोग क्या करेंगे, हमें देखेंगे तो हम में फंस जाएंगे, है ना। इसलिए हम ना दिखें, बाबा दिखाई दे। और बाबा तब दिखते हैं जब हम योग युक्त रहते हैं। कहते हैं ना कि जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में खोया हुआ हो, या प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में खोई हुई हो, तो लगता है ना ये कहीं खोए हुए हैं, किसी की याद में मग्न है। तो ऐसे ही हम यदि उसकी याद में डूबे रहते हैं तो हम नहीं दिखते, वो दिखते हैं। तो योग के लिए विशेष ना मनन, मन से मनन और बुद्धि से विजन, इन दोनों को साथ लेके चला कीजिए। मेरा मन मनन करे और बुद्धि उस दृश्य को देखे, जो मैं मन से सोच रहा हूं उसे मैं देखूं, जितना अच्छी तरह मैं देख सकता हूं उतनी ही अच्छी अनुभूति मैं कर पाता हूं। और जो इन दोनों चीजों को साथ लेके चलता है वही एकाग्र हो पाता है, क्योंकि योग का अंतिम लक्ष्य हमारा है एकाग्र हो जाना। मनन करते करते मन मग्न हो जाए, डूब जाए। एकाग्रता कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं है कि मैं बस बाबा को देख ही रहा हूं, उसी पे एकाग्र हो जाऊं। मन से मनन करते करते बुद्धि स्वतः एकाग्र हो जाती है, और ये तभी होता है जब दोनों साथ साथ चल रहे हों, मन से मनन और बुद्धि से विजन अर्थात दृश्य। मान लो मैं आत्मा हूं, इसका चिंतन कर रहा हूं तो आत्मा दिखाई दे, परम धाम में हूं तो परम धाम दिखाई दे बुद्धि से, उस समय बुद्धि और कहीं ना जाए। जिसको बाबा कहते हैं यदि तुम एक घंटे योग में बैठो तो पूरे एक घंटे योग ही करो, उसमें और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए, सेवा का भी चिंतन नहीं। दुनियावी चिंतन तो अलग बात है, मेरा व्यावहारिक और लौकिक चिंतन तो अलग बात है, सेवा का भी चिंतन नहीं। एक घंटे यदि तुम योग में बैठो तो पूरे एक घंटे योग ही करो, पॉसिबल है? या मन भाग जाता है, मुंबई याद आ रही है कि बार बार हम पहुंच गए मुंबई में, हा? ऐसा तो नहीं ना। योगी अर्थात जिसके पास रूलिंग पावर हो, कंट्रोलिंग पावर हो, अपने मन और बुद्धि पर जिसका पूरा नियंत्रण हो। मन मुझ पे शासन ना करे, मैं मन पे शासन करूं, ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हम मधुबन से सीख के जाएं, और ये सीख के भी जाएं कि हमें अब अपने आप को नियंत्रण में रखना है। तो कुछ प्रैक्टिसेस जो आपको बहुत मदद करेंगे, जैसे मैंने कहा कि 8 घंटे बाबा कहते हैं योग करो कम से कम, या अपने जीवन को ही योगी जीवन बना लो, तो एक सुंदर सी प्रैक्टिस है जो आप लोगों को इसमें मदद करेगी। विविध प्रैक्टिस है, लेकिन जो प्रैक्टिस आज हमें करना है वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। देखिए 1 से लेके 12 तक घड़ी की सुई होती है ना, उस 1 से लेके 12 बजे तक घड़ी की सुइयों के साथ आप सारे दिन अच्छा कर्मयोग का अभ्यास कर सकते हो, और इसी अभ्यास को आप जब कभी योग में बैठो, एक घंटे के लिए भी बैठो, तो ड्रिल की तरह आप इस अभ्यास को कर सकते हो। कैसे? 1 में हम क्या अभ्यास करें, इसे चाहे तो आप नोट करके रख लीजिए, ये आपको बाद में भी काम आएगा, फिर इस प्रैक्टिस को हम करेंगे। 1 जब हम 1 कहते हैं तो 1 को योग के साथ रिलेट करें। 1 क्या है? बाबा। 1 कहा और मैं अपने मन बुद्धि से पहुंच गया परम धाम, बाबा के पास, 1 बाबा के पास, बाबा की छत्र छाया में मैं बाबा के पास बैठ गया, 1 बाबा। 2 क्या है? बाप दादा हैं और लक्ष्मी नारायण और अल्फ और बे, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज आप इसके साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। 2 जैसे हम कहें मम्मा और बाबा, मम्मा और बाबा मेरे आदर्श हैं, जिनके समान मुझे बनना है, जो ज्ञान योग और धारणा सेवा सबकी पराकाष्ठा में जो हैं, जो नंबर 1 हैं, मेरे माता पिता हैं, मुझे उनके समान बनना है। तो 2 कहा, मम्मा बाबा को अपने सामने देखा, उनसे दृष्टि ली, सकाश लिया, और उनके समान बनने की प्रेरणा, मेरे माता पिता में क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को मुझे भी अपने जीवन में ग्रहण करना है, योग हो गया ना। 3 क्या है? 3 लोक, योग के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं ना। 3 कहा और 3 लोकों की हम यात्रा करेंगे, साकार लोक, सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम, परम धाम से फिर सूक्ष्म वतन, और फिर अपनी साकार लोक में। 3 कहा और 3 लोकों की यात्रा शुरू बुद्धि से। 4 धाम, आप लोग करके आए ना कल 4 धामों की यात्रा। 4 कहा और 4 धामों की यात्रा, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल। शांति स्तंभ में क्या करना है? बाबा से शक्ति लेनी है। हिस्ट्री हॉल में अपने व्यर्थ बाबा को अर्पित करने हैं। बाबा के कमरे में बाप समान बनने का जो संकल्प है वो बाबा के कमरे में, कुटिया में रूह रिहान करना है। पांच स्वरूपों का अभ्यास है ना, अपना अनादि स्वरूप परम धाम का, आदि स्वरूप हमारा देव स्वरूप, हमारा मध्य पूज्य स्वरूप, फिर हमारा ब्राह्मण स्वरूप संगम युग का, और देन फरिश्ता स्वरूप। छह जी, छह में क्या अभ्यास करें इजीली, जो हमें याद आ जाए सहज रूप से, जैसे ये सब चीजें आपने कनेक्ट कर ली ना, पांच स्वरूप, छह छत्र छाया। हम किसकी छत्र छाया में हैं? बाबा के। तो छह कहा, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं मैं, बाबा की छत्र छाया में मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, आनंदित हूं। सात, आत्मा के सातों गुण, इनका गहराई से अनुभव, गहराई से अभ्यास। वैसे समय कम रहेगा, हम उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी आपको वक्त मिले ना, इनकी डिटेल में जाइए, आप सारे दिन अच्छी तरह से तपस्या कर सकते हैं। साथ में आत्मा के सातों गुणों का बहुत गहराई से चिंतन, अनुभव, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्ति का, पवित्रता का। आठ, अष्ट शक्तियां, आठों शक्तियों का अच्छा अनुभव और अभ्यास। नौ, नवरत्न और नौ दुर्गा, है ना, नौ दुर्गा बिठाते हैं ना आप, नौ में नौ दुर्गा। भाई भी दुर्गा है ना, हम भी शक्ति हैं ना, शक्ति। बाबा ने कभी कहा है कि जब तक तुम शक्ति नहीं बनोगे तब तक शिव से सर्व शक्तियां नहीं ले सकते। इसीलिए देह का भान नहीं, आत्मा शक्ति है, आत्मा पार्वती है, सीता है, वो एक ही साजन है ना हमारा। तो नौ कहा, और अपने नौ दुर्गा स्वरूपों का या इष्ट देव देवी स्वरूप का हम अनुभव करेंगे, जो भी हैं, चाहे वो सरस्वती हैं, चाहे वो महामाया है, चाहे वो काली है, दुर्गा है, जिस भी रूप में पूजा हो रही है उन रूपों को हम याद करते हुए सकाश देंगे। दस दस क्या है? एक जगह मैं करा रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। जैसे ही मैंने दस कहा, सामने से आवाज आई बस। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे, दस बस। बस मतलब अब दुनिया की तरफ से सब बस, अब ना दुनिया को देखना है, ना दुनिया से सुनना है, ना दुनिया से बोलना है, अब बस सारे कल्प उनके साथ रह लिए, अब तो मुझे एक के साथ रहना है ना। और दस में आपने सही कहा, रावण की याद आती है, तो हम रावण को याद नहीं करेंगे, लेकिन दस में अपने अंदर जाके चेक करेंगे, रावण का कोई अंश तो नहीं है शेष जिसे मुझे चेंज करना है, राइट? क्योंकि रावण के साथ तो मैं सतयुग में नहीं जा सकता ना, मुझे बदलना होगा, चेंज करना होगा। तो दस अपने आप को चेक करेंगे, रावण का कोई अंश तो नहीं, उसे चेंज करेंगे। ग्यारह एक मैं और एक मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, है ना, बाबा के सामने बैठे, बाबा से सब कुछ प्राप्त किया। बारह क्या है? बारह संगम युग है, हाँ, बारह बज रहे, घड़ी याद आ जाती है, बारह कहते हैं कि बस अब बारह बजने वाला है, और दुनिया में भी कहते हैं ना इसके बारह बज गए हैं, मतलब इसका काम पूरा होने वाला है, तो संगम की घड़ी भी याद आ जाती, अच्छी बात है। 12 में ये याद आ जाए कि बस अब वापस घर चलना है, अब सब कुछ समेट लेना है, एक ये स्मृति। और 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगम भी हमें 12 के साथ याद आते हैं, जिसे बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम मेरे भक्तों को संदेश दो, सकाश दो। तो 12 के साथ एक तो घर जाने की स्मृति, और साथ ही 12 के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में हम अपने सूक्ष्म स्वरूप से जाके सकाश दें, ठीक है ना। तो ये विशेष अभ्यास हम लोग अगले आधे घंटे में करेंगे। बस एक चीज और, हम लोग लंबे समय से ज्ञान और योग के मार्ग में चल रहे हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता कि योग के मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं खड़े हुए हैं, पीछे हट रहे हैं। क्या है पैमाना? एक पैमाना होना चाहिए जिससे पता चलता है कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, हम बढ़ पा रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कभी भी आप ना 3 बातों के बेस पे अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि हमारा योग बढ़ रहा है, हम वहीं खड़े हैं या पीछे जा रहे हैं। 3 उसके पैमाने हैं। पहला पैमाना है स्पीड, स्पीड अर्थात गति। मैं कितनी जल्दी किसी भी स्वरूप में स्थित हो पाता हूं, कितनी जल्दी। मान लो कहा गया कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस स्वरूप में स्थित हो जाओ, कितनी जल्दी मैं स्थित हो पाता हूं। या ये कहा बाबा ने कभी ड्रिल कराया कि चलो सभी अशरीरी हो जाओ, 1 सेकेंड में अशरीरी हो जाओ। मैं 1 सेकेंड में होता हूं, 1 मिनट में होता हूं, या 5 मिनट में होता हूं। स्पीड, जल्दी से जल्दी मुझे अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करना है, 1 सेकेंड तक पहुंचना, क्योंकि हमारा फाइनल पेपर 3 घंटे नहीं मिलेंगे हम लोगों को, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी बहुत ऊंची है ना, तो इसीलिए 1 सेकेंड में हम लोगों को अपना एग्जाम देना है। तो 1 सेकेंड तक मैं पहुंचू, स्पीड, कितनी जल्दी मैं किसी भी स्वरूप में स्थित होता हूं। ये भी चेक कीजिएगा जब हम लोग अभी ड्रिल करेंगे इन्हीं 12 बातों का, चेक कीजिएगा कितनी जल्दी मैं स्थित होता हूं। तो पहली बात स्पीड, दूसरी बात है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? देखिए, आम, आम का जब सीजन आता है, एक आम आपको 10 रुपए में भी मिल जाता है और एक आम आपको 100 रुपए में भी मिलता है, राइट। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? देखने में भले एक जैसे लगेंगे, उसी साइज के लगेंगे, क्वालिटी डिफरेंस है ना। तो क्वालिटी यदि हमारी डाउन है तो हमें उसे बढ़ाते चलना है। योग में भी अपनी क्वालिटी को रिफाइन करते जाना है हमें। आत्मा केवल बन जाना, परम धाम केवल पहुंच जाना, या विभिन्न स्वमानों की प्रैक्टिस कर लेना नॉट इनफ। उसकी क्वालिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जाए, रिफाइननेस आती जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना। और ये केवल प्रैक्टिस करने वालों को ही पता चल पाता है कि डे बाय डे मैं रिफाइन कर पा रहा हूं या नहीं। तीसरी बात है, जिस जो पैमाने की बात है, वो है ड्यूरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन, अवधि, कितने समय तक मैं किसी भी स्वरूप में स्थित रह पाता हूं, जिसको बाबा कहते हैं तुम जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर तक चाहो स्थित रह सको। ऐसा ना हो कि मैं फट से परम धाम तो पहुंच गया और उसी गति से मैं नीचे भी आ गया। हो जाता है ना, फट से पहुंच जाते हैं ऊपर और फट से नीचे भी आ जाते हैं, पता भी नहीं होता कि कब नीचे आ गए। ऊपर गए, देखा लाल लाल परम धाम, फिर कभी नीचे आके वो लाल लाल टमाटर देख रहे होते हैं बाजार में, पता ही नहीं चलता कब बाजार पहुंच गए, तरबूजों के पास लाल लाल तरबूज या लाल लाल टमाटर। तो ये स्थिति ना हो, स्थिति वो हो कि मैं जब तक चाहूं उस स्वरूप में स्थित रहूं जिस स्वरूप का मुझे निर्देश मिला है, जो कमांड मैंने अपने आप को दिया है, उतने समय तक मैं उस स्वरूप में स्थित रह पाऊं, ठीक है। चलिए फिर इन तीनों के बेस पे बहुत अच्छी तरह से अपने आप को चेक भी कीजिएगा, और अभी हम लोग इन अभ्यासों को करते हैं अच्छी तरह से, बहुत गहराई से, पूरी एकाग्रता के साथ। ए, चलें अपने परम धाम घर, एक बाबा के पास, मेरा असली घर महाज्योति बाबा अपना दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मलोक में फैला रहे हैं। मैं महाज्योति बाबा पर अपनी बुद्धि से एकाग्र हो जाता हूं, उनके दिव्य स्वरूप को निहारते हुए उनकी शक्तियों को स्वयं में समाते हुए एक पर एकाग्र दो। देखें मम्मा बाबा को अपने सामने मेरे माता पिता, जो संपूर्ण है सर्व गुणों में सर्व शक्तियों में, मुझे भी अपने माता पिता को फॉलो करना है, उनके समान बनना है। माता पिता से दृष्टि लेंगे और साथ ही उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का चिंतन करते हुए उनके समान बनने का प्रण लेंगे। तपस्या मास में अपने माता पिता के समान मुझे भी गहन तपस्या करनी है। तपस्या से ही मैं उनके समान संपन्न और संपूर्ण बन सकता हूं। मेरे संकल्प को माता पिता अपनी दृष्टि से बल भर रहे हैं। अच्छी तरह दृष्टि लेंगे, सकाश लेंगे, शांति चलें अब तीनों लोगों की यात्रा पर। बाबा कहते हैं ये तीनों लोग तुम्हें ऐसे लगने चाहिए जैसे ये तुम्हारे तीन कमरे हों, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना सहज है, वैसे ही अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी मूल वतन। चले यात्रा पर। देह से अलग फरिश्तों की दुनिया में अपने संपूर्ण फरिश्ते ब्रह्मा बाबा के सम्मुख सूक्ष्म शरीर को वहीं छोड़ परम धाम अपने निज स्वरूप में फिर सूक्ष्म वतन फिर नीचे साकार लोक में जाने और आने का अभ्यास चलें चारों धामों की यात्रा पर। शांति स्तंभ शक्ति भरेंगे बाबा से हिस्ट्री हॉल देखें अपने पूर्वजों के चित्र कितनी गहन साधना की है इन्होंने हमें भी ऐसी साधना करके यज्ञ को बल प्रदान करना है व्यर्थ से मुक्त सदा समर्थ स्थिति में रहना है देखें बाबा अपने खाट पे बैठे हैं, जैसे बाबा ने दादी के हाथ में हाथ देकर अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर की थी, बाबा ने मेरा भी हाथ अपने हाथ में ले लिया है और मुझे शक्तिशाली दृष्टि देते हुए अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर कर रहे हैं। और बाप समान भाव का वरदान दे रहे हैं, बाबा के हाथ में हाथ। शक्तियों से मैं चार्ज होता जा रहा हूं, और बाप समान स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। बाबा से वायदा करें, बाबा मैं आपके समान बनकर ही इस धरा पर रहूंगा, जैसे आपके संकल्प थे, आपके बोल थे, आपके कर्म थे, उन्हें मैं भी अपने जीवन से प्रत्यक्ष करूंगा। बाबा की कुटिया, कुटिया में बाबा के पास बैठकर प्यार भरी रूह रिहान करें, अपने इस वर्ष के संकल्प को बाबा से शेयर करें कि बाबा हमने क्या संकल्प लिया है, हम क्या करना चाहते हैं। रूह रिहान करें बाबा से कुटिया में। चली पुनः एक सुंदर यात्रा पर अब अपने पांचों स्वरूपों की सुंदर अनुभूति, अनादि स्वरूप। बीज रूप स्थिति, जहां सब आत्माएं चमकती हुई ज्योति के समान अपने घर परम धाम में विराजमान है। मैं बाबा के बेहद समीप हूं, चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश और गहन शांति। नीचे आए वहां से अपने आदि स्वरूप में मैं ज्योति परम धाम से नीचे आती हूं और देवता या देवी बन जाती हूं। आदि स्वरूप सत्ययुग संपूर्ण सत्व प्रधान स्थिति, सर्वगुण संपन्न, सोलह कलाओं से संपूर्ण, सिर पर डबल ताज, एक सुंदर सृष्टि। चारों तरफ देवताएं विचरण करते हुए देखें अपने स्वरूप को, अपने सजे सजाए स्वरूप को, अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को। मध्य स्वरूप मेरा पूज्य स्वरूप, मैं ही इष्ट देव इष्ट देवी हूं। मेरी ही मंदिरों में पूजा हो रही है, भक्त मेरा आह्वान कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। अपने इष्ट स्वरूप से भक्तों को सकाश, ब्राह्मण स्वरूप कितना भाग्यवान हूं मैं। सारा संसार जिसे ढूंढ रहा है, मैं
मैंने उन्हें प्राप्त कर लिया है, वो मेरे हो गए हैं, अपना सब कुछ मुझे प्रदान कर रहे हैं, मुझे याद दिला रहे हैं कि तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो, श्रेष्ठ हो, सारे विश्व का कल्याण तुम्हें करना है, सर्वात्माओं को गति और सदगति तुम्हें प्रदान करना है, संगम पर भगवान अपना सब कुछ मुझे प्रदान कर रहे हैं, वही मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, मेरे सद्गुरु हैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करें, वाह रे मैं, मुझ जैसा भाग्यवान सारे कल्प में और कोई नहीं होगा, जिसे भगवान की इतनी श्रेष्ठ पालना मिल रही है। जिसकी उंगली पकड़कर स्वयं भगवान चला रहे हैं, जिसे सुबह उठाते भी भगवान हैं और रात को लोरी देकर सुलाते भी भगवान हैं, जिसकी छत्र छाया बनकर हमेशा भगवान रहते हों, उस जैसा भाग्यशाली और कौन होगा। वाह रे मैं, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते अपने अंतिम स्वरूप की ओर, फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूं लाइट के शरीर में, मेरा ये हार्ड मांस का शरीर नहीं, लाइट का शरीर है, फरिश्ता हूं मैं, सभी खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फरिश्ते रूप में फील करें, मैं लाइट के शरीर में हूं, फरिश्ता हूं, और फरिश्ते बनकर अब हम सारे विश्व को भी सकाश देंगे चारों दिशाओं में, देखें पहले अपने स्वरूप को, जैसे ये मेरा शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल हल्का प्रकाश का है, जिससे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है, फरिश्ता हूं मैं। और अपने इस फरिश्ते स्वरूप से मुझे सारे विश्व को सकाश देना है। अपने राइट साइड में टर्न करें, स्थित हो जाए स्वमान में, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं, परम पवित्र फरिश्ता, इस धरा को पवित्र बनाने के लिए अवतरित हुआ हूं। अब देखें इस दिशा में जितनी भी प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं, उन तक मेरी सकाश जा रही है और प्रकृति के पांचों तत्व पावन हो रहे हैं। जाने दें अपने प्रकाश को मेरी दृष्टि से, मेरी भृगुटी से पवित्रता की श्वेत किरणें निकलकर इस दिशा में दूर दूर तक जा रही हैं, और इस दिशा में जो भी प्रकृति के तत्व आ रहे हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, सभी पावन होते जा रहे हैं। नदी, तालाब, पहाड़, जंगल, सब जैसे पवित्रता के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, पावन हो रहे हैं। फिर से अपनी राइट हैंड साइड में टर्न हूं। स्थित हो जाए इस स्वमान में। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता फरिश्ता हूं। इस ओर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, अशांत है, सबको मेरे सुख के वाइब्रेशंस, आनंद के वाइब्रेशंस जा रहे हैं और सभी सुखी और आनंदित होते जा रहे हैं। जाने दें अपने प्रकाश को, फील करेंगे मेरी शुभ भावनाएं, मेरे सुख और आनंद की तरंगे इस दिशा में दूर दूर तक, न केवल माउंट आबू, न केवल राजस्थान, न केवल भारत, बल्कि विश्व के कोने तक। जाने दें अपने सकाश को, सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सभी आनंदित हों। फिर से टर्न होंगे अपने राइट हैंड साइड पे। अब इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। इस दिशा में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी के बुद्धि का तार एक परमात्मा पिता से जुड़ जाए। सभी के दुख दूर हो, जाने दें अपने सकाश को पृथ्वी के अंत तक, दूर छोर तक। मेरी शुभ भावनाएं, मेरी शुभ कामनाएं सभी मनुष्य मात्र के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अब एक एक पेयर बना लें आप आपस में, एक एक पेयर बना लेंगे भाई भाइयों के साथ, बहने बहनों के साथ, और एक दूसरे के हाथ में हाथ देंगे, हाथ में हाथ ले। और जैसे सारे विश्व को हमने शुभ भावना शुभकामना दी, वैसे अब एक दूसरे को आत्मा देखते हुए अपने आत्मा भाई को अपनी गुड विशेस देंगे। मेरा आत्मा भाई बहुत महान योगी बन जाए, इसका जीवन निर्विघ्न हो जाए, बाबा से सदा इनकी बुद्धि का तार जुड़ा रहे, इनका जीवन सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। दिल से एक दूसरे को शुभकामना, आत्मा देखते हुए। अब अपनी वाणी से भी एक दूसरे को शुभकामना देंगे, धीरे से कान में, मेरी आपके लिए ये शुभकामना है, अपनी वाणी से, और प्यार से एक दूसरे से गले मिलके फिर अपने स्थान पर बैठेंगे। ओम शांति। ऐसे ही सुंदर योग का अभ्यास सारे दिन करेंगे और अपने योग को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। शरीर का नाम रूपेश है। 92 में बाबा के पास आना हुआ और 94 से बाबा के घर में समर्पित है, बाबा के बड़े भंडारे में सेवा है, और सूर्य भाई जी के साथ ही विशेष शुरू से रहना हुआ है, और अलग अलग स्थानों पे जैसे बाबा सेवा कराते रहते हैं, कभी सफेद कपड़ों में तो कभी रंगीन कपड़ों में, निवायदा किया है उनसे समर्पित होते समय, आप जो पहनाओगे वो पहनेंगे, जो खिलाओगे वो खाएंगे, तो बाबा जैसे पहना रहे हैं, जैसे खिला रहे हैं, जहां बिठा रहे हैं वो सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति।